चाहत की माँ के मरने के बाद आहान उसे अपने घर ले आया था। आहान ने चाहत के सभी रिश्तेदारों को उनके घर भेज दिया था। घर आने के बाद आहान ने जबरदस्ती चाहत को खाना खिलाया। खाना खत्म होने के बाद आहान और चाहत बातें कर रहे थे। चाहत अपनी माँ के जाने के दर्द को भुला नहीं पा रही थी, इसलिए उसने आहान को खुद के करीब आने के लिए कहा। आहान ने चाहत को दोनों कंधों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर हल्के गुस्से में कहा, पागल तो नहीं हो गई हो डॉल? तुम्हारी हालत अभी बहुत खराब है। मेरे पास मेडिसिन्स हैं जिन्हें लेने के बाद तुम्हें नींद आ जाएगी। लेकिन मुझे नींद की दवाइयां लेकर नहीं सोना है आहान। आपने मुझे वादा किया था कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। आपको मेरी बात माननी ही होगी, चाहत ने खोए हुए स्वर में कहा और फिर अपना दुपट्टा निकालकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। वो अपने सूट की जिप खोलने लगी, तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आहान ने चाहत की आंखों में देखते हुए कहा, ये सब मत करो डॉल, तुम मुझे मेरी नज़रों में गिरा रही हो। मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैंने तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया। बोलते हुए आहान ने अपने हाथ पीछे किए और चाहत की ड्रेस की जिप बंद करने लगा। चाहत ने आहान का हाथ दूसरी तरफ कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा है और आप मना कर रहे हो। मुझे दर्द चाहिए, इतना दर्द जो कि मेरी माँ के जाने के दर्द के आगे कुछ ना हो। अगर आप वो सब नहीं करोगी तो मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे मुझे तकलीफ हो। अपनी बात कहकर चाहत खड़ी हुई और उठकर जाने लगी। चाहत ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर वहाँ साइड में एक कांच का फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ था। आहान ने पिछली बार सारा सामान तोड़ दिया था, उसके बाद ये फ़ोटो फ्रेम नया ही आया था और उसमें अब तक फ़ोटो नहीं बदली गई थी। चाहत ने उसे नीचे गिराया और उसके टूटे कांच का टुकड़ा अपने हाथ में उठा लिया। वो बिल्कुल किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। आर यू मैड डॉल? यहीं रुक जाओ, आहान जोर से चिल्ला कर बोला। फिर वो चाहत के पास आया और उसके हाथ से कांच का टुकड़ा छीन लिया। चाहत के हाथ की चोट लग गई थी, उसके हाथ से हल्का खून निकल रहा था। आहान ने चाहत की तरफ देखकर गुस्से में कहा, मैंने कहा था ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आए। तो आपको गुस्सा आ गया है? मैं हूँ यहाँ पर आहान, आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हैं, चाहत ने जवाब दिया। आहान ने आगे कुछ नहीं बोला। उसने चाहत का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लेकर गया। आहान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और चाहत की चोट पर बैंडेज लगाने लगा। आहान जब बैंडेज कर रहा था तब चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों दर्द ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आहान? तुम अभी अपने होश में नहीं हो डॉल, तुम्हें थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत है, आहान बोला और चाहत को नींद की गोलियां देने लगा। चाहत ने उसका हाथ पकड़ लिया और नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये नहीं लेनी है। उसने आहान के हाथ से मेडिसिन ली और वापस रख दी। चाहत ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपने होंठ आहान के होठों पर रखे और किस करने लगी। आहान भी सब कुछ भूल गया था। चाहत खुद से पहली बार उसके करीब आई थी और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। किस करते हुए आहान के हाथ चाहत की पीठ पर थे और उसने उसके सूट की जिप खोली। वहीं चाहत आहान की शर्ट के बटन खोल रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फ्लोर पर बिखरे थे। आहान ने चाहत की ख्वाहिश पूरी कर दी थी। आहान ना चाहते हुए भी चाहत के करीब आने पर अग्रेसिव हो जाता था। आज भी वही हुआ था। चाहत जो चाहती थी वो उसे मिल गया था, दर्द, बेतहाशा दर्द। रात के लगभग 2 बजे के करीब आहान ने चाहत को छोड़ा। चाहत उसके पास बेसुध सी लेटी सीलिंग को देख रही थी। आहान ने चाहत के चेहरे की तरफ देखा तो अचानक चाहत के मुंह से निकला, दर्द हो रहा है आहान, पर मम्मा के जाने के दर्द से ज्यादा नहीं है, बोलते हुए चाहत बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। आहान ने उठकर उसे गले लगाया और सहलाते हुए कहा, रो लो डॉल, जितना रोना है रो लो, रोकर अपना सारा दर्द बाहर निकाल दो, इसके बाद मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहिए डॉल। चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोते हुए आहान में सिमटती जा रही थी। चाहत पूरी रात ऐसे ही आहान के गले लगकर रोती रही। थक जाने पर सुबह वो वहीं आहान की बाहों में ही सो गई। आहान ने उसे बिस्तर पर लेटाया और ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा डॉल, ये दिन भी गुजर जाएंगे, सब ठीक होने पर हम दोनों अच्छे से साथ रहेंगे। आहान का हाथ चाहत के सीने पर था और वो उसी तरह सो गया। नामिनी को किडनैप हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। उसे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसके चेकअप के लिए एक बार वहाँ डॉक्टर भी आई हुई थी, लेकिन दानिश के डर से दामिनी चाहकर भी उससे मदद नहीं मांग पाई। सुबह के वक्त बेसमेंट लॉक करके दानिश के आदमी बाहर हल्की धूप सेक रहे थे, जबकि दामिनी अंदर अकेली थी। बेसमेंट से निकलने का एक ही दरवाजा था और वो लॉक था, इसीलिए वो बेफिक्र थे कि दामिनी बाहर नहीं निकल पाएगी। वहीं अकेले होने पर दामिनी के पास अच्छा मौका था। उसने धीरे से कहा, मुझे अक्षरा गोइंका से मिलकर बात करनी होगी, अब तक विजय को भी मेरी किडनैपिंग के बारे में पता चल गया होगा। वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगी? हमारी आहान के सामने कोई औकात नहीं है, लेकिन अक्षरा गोइंका की है। एक बार वो यहाँ से बाहर निकल गई तो उसका बाप कुछ ना कुछ करके मुझे भी यहाँ से बाहर निकाल ही लेगा। उस दिन तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी आहान ओबेरॉय, खुद से बातें करते हुए दामिनी धीमे कदमों से चलती हुई अक्षरा के कमरे की तरफ जा रही थी। वो सतर्क थी, इसीलिए बार बार इधर उधर देख रही थी। अक्षरा के कमरे के पास आकर दामिनी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसके रूम में एक रोशनदान बना हुआ था जिससे हल्की धूप कमरे के अंदर आ रही थी और वो अक्षरा के मुंह पर पड़ रही थी। दामिनी ने देखा अक्षरा उठी हुई है। दामिनी को अपने सामने देखकर अक्षरा घबराते हुए बोली, कौन कौन हो तुम,
प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे जाने दो। उसे लगा दामिनी भी आहान के आदमियों में से ही है। अपनी घबराहट में अक्षरा काफी अग्रेसिव हो रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कहीं आहान के आदमी ना आ जाएं, ये सोचकर दामिनी जल्दी से उसके पास गई और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अक्षरा बोलने के लिए छटपटा रही थी, तभी दामिनी ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, मुझे अपना दुश्मन मत समझो, मैं भी हालातों की मारी हूं तुम्हारी तरह। मुझे भी यहां किडनैप करके लाया हुआ है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं अपना हाथ छोड़ रही हूं, अब चिल्लाना मत वरना वो लोग आ जाएंगे। अपनी बात खत्म करके दामिनी ने अपना हाथ अक्षरा के मुंह के आगे से हटा दिया था। फिर दामिनी ने उसके सामने आकर अक्षरा के चेहरे की तरफ देखा। अक्षरा ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर मैंने बाहर कदम रखा तो वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे यहीं रहना है, मुझे नहीं जाना बाहर, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार देंगे। अक्षरा बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। उसकी बातों से दामिनी समझ गई थी कि उसके साथ काफी टॉर्चर हुआ है, इतना टॉर्चर कि अब वो बाहर जाने से घबरा रही है। दामिनी ने अक्षरा को चुप रहने का इशारा किया और फिर दबी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो और ये सब किसने किया है, ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी असली शख्सियत को याद दिलाना अब मेरा काम है, मैं कल फिर इसी टाइम पर तुम्हारे पास आऊंगी। अपनी बात पूरी करने के बाद दामिनी वहां से जाने लगी, तभी पीछे से अक्षरा ने उलझन भरे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? क्या तुम जानती हो? दामिनी जवाब देने के लिए उसकी तरफ पलटी और इविल स्माइल करते हुए कहा, तुम हुकुम का इक्का हो बेबी। उसके बाद दामिनी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई।
उसके जाने की अक्षरा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, मैं तो हुकुम का इक्का हूँ डार्लिंग, लेकिन तुम सिर्फ एक मोहरा हो। अक्षरा ने अपनी आंखें खोली, उसकी भूरी आंखों में आहान के लिए गुस्सा था, उसे सब याद था। अक्षरा की आंखों में वो सब यादें एक सीन की तरह चलने लगी। जब शादी के लिए वो तैयार होकर अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठी ही थी कि तभी अचानक से गाड़ी का दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया था। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। गाड़ी की लाइट बंद होने की वजह से उसमें अंधेरा था और अक्षरा घबरा गई थी। अचानक से लाइट्स ऑन हुई और अक्षरा ने डरते हुए दूसरी तरफ देखा तो वहां पर दूल्हे के कपड़े पहने हुए आहान बैठा था। सरप्राइज बेबी, आहान ने मुस्कुराकर कहा। सब अपनी शादी में स्पेशल और ग्रैंड एंट्री चाहते हैं, तो मैंने भी सोचा कि तुम्हारी एंट्री को मैं और स्पेशल बना दूं। मैंने प्लान किया है, क्यों ना हम दोनों साथ में एंट्री लें, कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया?
बहुत ही अच्छा है आहान, अक्षरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स का दिल टूट जाएगा। वो ऐसे सोच रही थी कि मेरे साथ डांस करते हुए एंट्री लेगी, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी शादी है तो हम अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे ना। रही बात तुम्हारी फ्रेंड्स की, तो मैंने उन्हें मनाने का इंतज़ाम कर दिया है। मैंने उन सब के लिए डायमंड रिंग्स खरीदी हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि डांस से ज़्यादा डायमंड मैटर करता है लड़कियों के लिए, आहान ने आई विंक करके कहा, जिस पर अक्षरा ने हंसते हुए हामी भरी। आहान फिर गाड़ी के अंदर से ही ड्राइविंग सीट पर आ गया था। उसने अक्षरा से कहा, आज के लिए आपका स्पेशल ड्राइवर हाजिर है मैडम, अब ड्राइवर को साथ लेकर तो नहीं आ सकता ना, एंट्री मुझे लेनी है तो गाड़ी भी मुझे ही ड्राइव करनी होगी। अक्षरा बहुत खुश थी, इसलिए उसे आहान के किसी भी एक्शन पर शक नहीं हुआ। वो अभी भी बैक सीट पर बैठी थी जबकि आहान गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, इतना गुस्सा कि मन कर रहा था कि अभी अक्षरा की जान ले ले। गाड़ी ड्राइव करते हुए आहान ने कहा, बेबी तुम्हें भूख लगी होगी और बाद में खाना खाने का मौका नहीं मिलेगा, देखो साइड में वहां मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा रखा है, कोल्ड ड्रिंक भी है, हैव फन। आहान के इतने केयर करने पर अक्षरा खुश हो गई और मन ही मन खुद को काफी खुशकिस्मत समझ रही थी। उसने कोल्ड ड्रिंक के साथ पिज्जा एंजॉय किया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी। अक्षरा की आंख खुली तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया और उसके बाद से ही वो इस कमरे में थी। आहान और उसके आदमियों ने उसे बहुत टॉर्चर किया, बाहर क्या हुआ था उसे उसके बारे में सब पता था क्योंकि आहान ने उसे टीवी न्यूज़ दिखाई थी। अक्षरा इतने दिनों से उससे बदला लेने का सोच रही थी, वो जानती थी कि आज नहीं तो कल वो यहाँ से बाहर आएगी और वो आहान को उसके किए की सज़ा ज़रूर देगी। अगले ही पल अक्षरा अतीत की यादों से बाहर आई और उसने धीरे से कहा, धोखा दिया तुमने मुझे और धोखे का अंजाम धोखा ही होता है आहान ओबेरॉय, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था, एक अरेंज मैरिज होते हुए भी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पूरे मन से एक्सेप्ट किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। कहते हैं जो बोते हैं वही काटते हैं, तुमने मुझे जो दिया है वो सूद समेत तुम्हें वापस लौटाऊंगी और तुम्हें भी अपने अपनों से दूर रहना होगा। बोलते हुए अक्षरा की आंखों में बदले की आग जल रही थी। आहान इन सब बातों से अनजान था, वो अपने घर पर बेफिक्र होकर चाहत की बाहों में सोया हुआ था। दोपहर के करीब उसकी आंख खुली तो वो तैयार होने के लिए बाथरूम में चला गया। उसके बाद वो बाहर आया तो चाहत भी उठ चुकी थी। कल रात के बाद चाहत को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। आहान ने चाहत की तरफ देखकर कहा, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ डॉल, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, पहले हम मेरी मॉम से मिलने जा रहे हैं और फिर तनु के पास चलेंगे, तुम्हें साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। चाहत ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। उसे चुप देखकर आहान को इरिटेशन हो रही थी।
तो वो चिरते हुए बोला, पहले की तरह बिहेव करो डॉल, तुमने जो मांगा था मैंने दे दिया, अब मेरी बारी है, मुझे अपनी पुरानी डॉल वापस चाहिए। अपनी बात कहकर आहान चाहत के पास आया और उसे बाहों में उठाकर बाथरूम में छोड़कर आ गया। वो चाहत के लिए कपड़े निकाल रहा था, जबकि चाहत खुद को मन ही मन आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर रही थी। अब तक वो आहान के साथ अपनी मॉम के लिए थी, लेकिन अब आहान के साथ रहने की उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। चाहत आहान से दूर जाने के बारे में सोच रही थी।